एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोंटेस्क्यू की मशहूर किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज की, मतलब कानूनों की आत्मा।
कानूनों की आत्मा, बड़ा गहरा नाम है।
हाँ, और ये सिर्फ कोई पुरानी धूल खाती किताब नहीं है। ये समझने में मदद करती है कि क्यों भाई अलग अलग समाजों में अलग तरह के कानून होते हैं, अलग सरकारें होती हैं, और सबसे जरूरी आज़ादी को कैसे बचाकर रखा जाए।
बिल्कुल, और आजकल तो ये बातें बहुत उठती हैं ना कि सत्ता एक जगह सिमट रही है, लोगों की आज़ादी का क्या होगा। तो ऐसे में मोंटेस्क्यू को पढ़ना और भी जरूरी हो जाता है, मुझे लगता है।
आज के लिए क्या मायने रखते हैं?
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर मोंटेस्क्यू की दुनिया में। पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लें। चार्ल्स लुई द सिकुंदा बैरन द लाब्रेद ए द मोंटेस्क्यू, नाम भी काफी लंबा है।
हाँ, नाम तो है। 1689 में जन्म, 1755 में मृत्यु। फ्रांस के थे, प्रबुद्ध विचारक। पर खास बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ कमरे में बैठकर सोचने वाले दार्शनिक नहीं थे।
अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल अनुभव भी था।
बिल्कुल, वो एक बड़े खानदान से तो थे ही, पर साथ में बोर्डों की अदालत में जज और फिर अध्यक्ष भी रहे। तो कानून कैसे काम करता है, सरकार कैसे चलती है, ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, कोर्ट रूम में बैठकर।
अरे वाह, तो उन्हें पता था कि किताबी बातें जमीन पर कैसे उतरती हैं या कई बार नहीं उतर पाती।
हाँ, और वो जमींदार भी थे, तो जाहिर है आर्थिक मामलों की भी समझ रही होगी। और इस किताब से पहले भी वो अपनी एक और किताब पोर्शन लेटर्स से काफी मशहूर हो चुके थे।
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। वो व्यंग्य था शायद फ्रांसीसी समाज पर।
जी, उसमें उन्होंने जैसे बाहर से आए यात्रियों की नज़र से अपने ही समाज पर टिप्पणी की थी, तो ये दिखाता है कि उनमें चीज़ों को अलग अलग नज़रियों से तुलना करके देखने की आदत थी।
और उन्होंने यात्राएं भी की थीं, इंग्लैंड गए थे शायद।
हाँ, और ये बहुत अहम पड़ाव था। इंग्लैंड जाकर उन्होंने वहां की संवैधानिक व्यवस्था देखी, जहां राजा तो था पर उसकी ताकत पर संसद का अंकुश था। ये देखकर ही उनके मन में वो शक्तियों के पृथककरण वाला विचार पक्का हुआ होगा।
तो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल अनुभव दोनों का मेल था उनमें। जज, जमींदार, यात्री, लेखक, सब कुछ।
बिल्कुल, और इसी सब अनुभव और करीब 20 साल की मेहनत का नतीजा है ये किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज। 1748 में आई। ये कोई छोटी मोटी गाइड बुक नहीं है, ये समझिए कि सरकार और समाज का एक पूरा विज्ञान बनाने की कोशिश थी।
समाज का विज्ञान
दिलचस्प है, पर इसका सबसे बड़ा या कहें सबसे नया विचार क्या था उस समय के हिसाब से?
देखिए, उस जमाने में अक्सर यही माना जाता था कि कानून तो बस राजा या शासक बनाते हैं अपनी मर्जी से।
मोंटेस्क्यू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है।
तो फिर कानून कहाँ से आते हैं?
उनका मेन तर्क ये था कि कानून किसी समाज की आत्मा से निकलते हैं, मतलब उस समाज की जो खासियतें हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, जमीन कैसी है, लोग कितने हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, धर्म क्या है, इतिहास कैसा रहा है, इन सब से मिलकर एक तरह की आम फितरत या सामान्य चेतना बनती है, जिसे उन्होंने एस्प्री जनरल कहा।
अच्छा, एस्प्री जनरल। हाँ, यानी समाज का मिजाज।
हाँ, कह सकते हैं। और कानून उसी मिजाज के हिसाब से होने चाहिए। अगर कानून उस समाज की फितरत से मेल नहीं खाएंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे या जबरदस्ती थोपे हुए लगेंगे।
ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब जैसे हर इंसान का नेचर अलग होता है, वैसे ही हर समाज का।
बिल्कुल, और यही उनका सबसे अहम योगदान है, अच्छी सरकार की सापेक्षता का सिद्धांत। वो ये नहीं कहते कि भाई गणतंत्र ही सबसे अच्छा है या राजतंत्र ही।
तो कोई एक बेस्ट मॉडल नहीं है?
नहीं, वो कहते हैं कि सबसे अच्छी सरकार वो है जो उस खास समाज के हालात और उसकी आत्मा के सबसे ज्यादा मुआफिक हो, सबसे ज्यादा फिट बैठे। जो व्यवस्था रोम में सफल थी, जरूरी नहीं कि वो फ्रांस में भी चले।
तो ये किताब हमें कोई रेडीमेड जवाब नहीं देती, बल्कि सोचने का एक तरीका सिखाती है।
हाँ, ये समझने का फ्रेमवर्क देती है। ये बताती है कि अलग अलग तरह की सरकारें क्यों होती हैं, जैसे गणतंत्र, राजतंत्र या फिर तानाशाही। उनके पीछे कौन सी ताकत काम करती है, जैसे गणतंत्र में सद्गुण, राजतंत्र में सम्मान, तानाशाही में डर।
जी, ये सिद्धांत वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। हर सरकार का अपना एक सिद्धांत।
हाँ, मोंटेस्क्यू 3 मुख्य तरह की सरकारें बताते हैं, और हर एक का एक ड्राइविंग प्रिंसिपल या सिद्धांत। पहला, गणतंत्र, रिपब्लिक। इसका सिद्धांत है सद्गुण, वर्चू, मतलब नागरिकों में देश के लिए प्यार, बराबरी का भाव और अपने हित से ऊपर देश का हित रखने की भावना।
ये तो छोटे समाजों में ही मुमकिन लगता है शायद।
हाँ, वो भी मानते थे कि ये छोटे राज्यों के लिए बेहतर है। दूसरा, राजतंत्र मोनार्की। इसका सिद्धांत है सम्मान, ऑनर। यहां लोग पद, इज्जत, शौहरत के लिए काम करते हैं। राजा होता है पर उसकी शक्ति पर कानूनों और बीच की संस्थाओं जैसे अमीर उमरा वर्ग का अंकुश रहता है।
और तीसरा?
तीसरा, निरंकुशता, डेस्पोटिज्म। और इसका सिद्धांत है भय, फियर। यहां बस एक शासक की मनमानी चलती है, कोई कानून नहीं, कोई अंकुश नहीं, डर के मारे ही लोग काबू में रहते हैं।
और ये सिद्धांत सिर्फ कहने की बातें हैं या इनका असर समाज पर भी दिखता है, जैसे शिक्षा या कानूनों पर?
नहीं नहीं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। मोंटेस्क्यू दिखाते हैं कि ये सिद्धांत समाज की हर चीज में झलकते हैं। जैसे गणतंत्र में शिक्षा का जोर किस पर होगा? सद्गुण सिखाने पर। राजतंत्र में शायद तौर तरीके, शिष्टाचार, सम्मान की बातें सिखाई जाएंगी।
और निरंकुशता में तो शायद चाहेंगे कि लोग कुछ सीखे ही नहीं।
बिल्कुल, वहां तो कोशिश होगी कि लोग अनजान बने रहें, सवाल ना करें। इसी तरह कौन से कानून बनेंगे, जुर्म की सजा क्या होगी, ऐशो आराम पर कितनी रोक होगी, औरतों की समाज में क्या जगह होगी, ये सब चीजें उस सरकार के मूल सिद्धांत से जुड़ी होती हैं।
और अगर ये सिद्धांत ही कमजोर पड़ जाएं
तो सरकार का पतन शुरू हो जाता है। जैसे गणतंत्र में लोगों में देश प्रेम और ईमानदारी खत्म हो जाए, या राजतंत्र में सम्मान की जगह चापलूसी ले ले, तो समझो वो व्यवस्था ढहने वाली है।
इसके बाद वो स्वतंत्रता की बात करते हैं और वो शक्तियों के पृथक्करण वाला मशहूर सिद्धांत आता है ना, पुस्तक 11 में शायद।
जी हाँ, पुस्तक 11। ये उनका सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे ज्यादा असर डालने वाला विचार है। वो इंग्लैंड का उदाहरण देते हैं जो उन्होंने खुद देखा था।
हाँ, जहां राजा और संसद थे।
सही, तो वो कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब ये आजादी के आपको किसी का बेवजह डर ना हो, तभी बच सकती है जब सरकार की तीन मुख्य ताकतें, कानून बनाने वाली विधायी, कानून लागू करने वाली कार्यकारी और न्याय करने वाली न्यायिक, अलग अलग हाथों में हो।
यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी।
बिल्कुल, ताकि कोई एक ही संस्था या व्यक्ति सारी शक्तियों का मालिक ना बन जाए।
इसी को चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं ना, एक शक्ति दूसरे पर नजर रखे, उसे रोके।
हाँ, यही मूल विचार है कि शक्ति को काबू में रखने का सबसे अच्छा तरीका शक्ति ही है। पावर शुड बी अ चेक टू पावर।
सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा काम करता है? इसे लागू करने में दिक्कतें नहीं आती?
सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, सिद्धांत रूप में ये बेहतरीन है, पर असलियत में इसे बनाए रखना एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। कई बार ये तीनों अंग एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं, या कभी कोई एक ज्यादा ताकतवर होने लगता है। फिर भी मोंटेस्क्यू का ये बुनियादी आइडिया आज भी दुनिया भर के लोकतंत्रों का आधार है।
और उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और टैक्स के बारे में भी कुछ कहा था?
हाँ, पुस्तक 12 और 13 में वो कहते हैं कि सिर्फ शक्तियों का बंटवारा काफी नहीं, नागरिकों की व्यक्तिगत आजादी, जैसे बिना वजह गिरफ्तारी ना होना, निष्पक्ष मुकदमा मिलना, ये भी जरूरी है। और टैक्स, वो मानते थे कि बहुत ज्यादा टैक्स लगाना या बेरहमी से वसूलना भी एक तरह की गुलामी ही है, ये स्वतंत्रता को खत्म कर देता है।
चलिए अब उनके उस विचार पर आते हैं जो आज थोड़ा, क्या कहते हैं, विवादास्पद लगता है, जलवायु वाला। क्या वाकई मौसम तय करता है कि सरकार कैसी होगी?
हाँ, ये हिस्सा है जो आज हमें थोड़ा अजीब लग सकता है। पुस्तकें 14 से 18, उनका तर्क था कि भाई जहां ठंडी जलवायु है, वहां के लोग ज्यादा फुर्तीले, बहादुर और आजादी पसंद होते हैं, तो वहां गणतंत्र या सीमित राजतंत्र पनपने की संभावना ज्यादा है।
और गर्म इलाकों में?
गर्म जलवायु उनके हिसाब से लोगों में आलस लाती है, उन्हें अधीनता स्वीकार करने वाला बनाती है, तो वहां निरंकुशता यानी तानाशाही आसानी से आ जाती है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि उपजाऊ जमीन पर राजतंत्र और बंजर जमीन पर गणतंत्र के आसार ज्यादा होते हैं।
इसे तो आजकल क्रिटिसाइज किया जाता है पर्यावरणीय नियतिवाद कहकर, मतलब सिर्फ पर्यावरण ही सब कुछ तय नहीं करता।
सही कहा, आज हम मानते हैं कि हाँ, माहौल का असर तो होता है, पर सिर्फ वही सब कुछ तय नहीं करता। संस्कृति है, इतिहास है, आर्थिक हालात हैं, बहुत कुछ है। लेकिन मोंटेस्क्यू की अहमियत इस बात में है कि उन्होंने पहली बार इतने व्यवस्थित तरीके से इन बाहरी चीजों और समाज के बीच के रिश्ते को देखने की कोशिश की। ये आइडिया की संदर्भ मायने रखता है, वो यहीं से पुख्ता हुआ।
हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, भले ही उनका निष्कर्ष आज सही ना लगे।
हाँ, और ये भी सच है कि उनके इन तर्कों का इस्तेमाल उस समय गुलामी जैसी प्रथाओं को सही ठहराने के लिए भी किया गया, जो कि जाहिर है नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है।
आगे बढ़ते हैं, वो राष्ट्र की सामान्य भावना और व्यापार की बात करते हैं। ये एस्प्री जनरल क्या बला है?
ये उनकी एक और अहम अवधारणा है पुस्तक 19 में। ये किसी देश का आप कह लीजिए एक मिलाजुला स्वभाव या चरित्र है। ये कैसे बनता है? वहाँ की जलवायु, कानून, इतिहास, रीति रिवाज, नैतिकता, धर्म, इन सब के मेल से।
तो कानून बनाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए।
मॉन्टेस्क्यू यही कहते हैं कि जो कानून बनाने वाले हैं विधायक, उन्हें सामान्य भावना को समझना चाहिए। इसे एकदम से बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए, वरना कानून बेअसर रहेंगे।
और व्यापार यानी कॉमर्स, उसके बारे में वो क्या सोचते थे?
अरे वो तो व्यापार के बड़े हिमायती थे। उनका मानना था कि कॉमर्स, जिसे वो डूक्स कॉमर्स यानी सौम्य वाणिज्य कहते थे, लोगों के व्यवहार को नरम बनाता है।
नरम बनाता है? कैसे?
हाँ, वो मानते थे कि व्यापार लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है, आपसी निर्भरता बढ़ाता है, इससे कट्टरता कम होती है, पूर्वाग्रह टूटते हैं और देशों के बीच शांति भी बढ़ती है, क्योंकि लड़ने से व्यापार का नुकसान होता है। साथ ही ये उदारवादी यानी लिबरल किस्म की सरकार को भी बढ़ावा देता है।
और धर्म, धर्म और कानून के रिश्ते पर क्या कहा उन्होंने?
धर्म पर भी उन्होंने काफी लिखा है, पुस्तकें 24 से 26। वो मानते थे कि धर्म समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है, नैतिकता का आधार दे सकता है, लेकिन उन्होंने राजनीति में धर्म के सीधे दखल के खतरों से भी आगाह किया, और खासकर धार्मिक असहिष्णुता यानी दूसरे धर्मों को बर्दाश्त न करने की भावना को वो बहुत खतरनाक मानते थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की।
अच्छा, क्या उन्होंने ये भी देखा कि कुछ धर्म किसी खास तरह की सरकार के साथ ज्यादा मेल खाते हैं?
हाँ, कुछ हद तक। जैसे उन्हें लगा कि प्रोटेस्टेंटिज्म शायद गणतंत्रों के साथ ज्यादा आसानी से जुड़ता है, और कैथोलिकिज्म राजतंत्रों के साथ। ये भी उनके अवलोकन थे।
और किताब के आखिर में वो इतिहास की बात करते हैं फ्रांसीसी कानूनों की।
जी, आखिरी कुछ पुस्तकें 27 से 31 ज्यादातर फ्रांस के पुराने सामंती कानूनों और रोमन कानूनों के इतिहास पर हैं। ये एक तरह से उनके पूरे सिद्धांत का प्रैक्टिकल उदाहरण है कि देखो कानून कैसे समय के साथ, समाज के बदलने के साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं। ये फिर से उसी बात पर जोर है कि कानूनों को उनकी जड़ों में, उनके बनने के माहौल में समझना कितना जरूरी है।
तो भाई, ये तो बहुत ही व्यापक विश्लेषण है। अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ 4-5 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो जिन्हें हम याद रखें, तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे मशहूर तो वही है, शक्तियों का पृथककरण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर आजादी बचानी है तो ताकत को एक जगह जमा मत होने दो, बांट दो।
हाँ, ये तो है ही।
दूसरा,
अच्छी सरकार की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ गुड गवर्नमेंट। कोई एक साइज सबको फिट नहीं आता। बेस्ट सरकार वही है जो उस जगह के माहौल, संस्कृति, लोगों के मिजाज के हिसाब से हो।
ये बात तो भारत जैसे देश के लिए कितनी सही लगती है, जहां इतनी विविधता है।
बिल्कुल। तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ, संदर्भ का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। चाहे वो भूगोल हो, जलवायु हो, या फिर इतिहास और रीति रिवाज, इन चीजों को समझे बिना अच्छे कानून या नीतियां नहीं बन सकती।
चौथा कौन सा मुद्दा उठाएंगे? चौथा, मध्यवर्ती निकायों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट बॉडीज। मतलब सरकार और आम जनता के बीच में कुछ संस्थाएं होनी चाहिए, जैसे पुराने जमाने में अमीर उम्र वर्ग या चर्च थे, या आज के जमाने में कहें तो स्वतंत्र मीडिया, सिविल सोसाइटी संगठन, पंचायतें वगैरह।
ये क्यों जरूरी हैं?
मॉन्टेस्क्यू मानते थे कि ये संस्थाएं सरकार की ताकत पर एक तरह का ब्रेक लगाती हैं, उसे बेलगाम होने से रोकती हैं। इनके बिना शासक और शासित के बीच कोई नहीं होता, और तानाशाही का रास्ता खुल जाता है।
और शायद पांचवा, मध्यम मार्ग पर जोर, अतिवाद से बचना।
हाँ बिल्कुल, मॉडरेशन, संतुलन। वो किसी भी चीज की अति के खिलाफ थे। संतुलित सरकार ही टिकाऊ हो सकती है।
इस किताब में कुछ ऐसी लाइनें भी हैं जो एकदम दिमाग में बैठ जाती है ना?
हाँ, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आज भी कोट की जाती हैं, जैसे शक्ति ही शक्ति पर अंकुश होनी चाहिए, पावर शुड बी अ चेक टू पावर। ये तो जैसे लोकतंत्र का मूल मंत्र बन गया है।
और वो वाली बात कि हर सरकार का पतन उन सिद्धांतों के शय से शुरू होता है जिन पर वो स्थापित हुई थी। ये कितनी सच्ची लगती है।
बिल्कुल।
ये याद दिलाता है कि सिर्फ ढांचा खड़ा कर देना काफी नहीं, उस ढांचे को चलाने वाली जो भावनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उन्हें भी जिंदा रखना पड़ता है।
नैतिक बुनियाद जरूरी है।
और वो सापेक्षता वाली बात कितनी खूबसूरती से कही है। कानून उन लोगों के लिए इतने उपयुक्त होने चाहिए जिनके लिए वे बनाए गए हैं, कि यह केवल संयोग ही होगा यदि एक राष्ट्र के कानून दूसरे के अनुकूल हों।
हाँ, ये सीधे सीधे नकल करने के खिलाफ चेतावनी है।
बिल्कुल।
यदि दूसरों के कानून उठाकर अपने आप लागू करने से पहले 100 बार सोचो।
और एक लाइन जो मुझे हमेशा याद रहती है, कानून की आड़ में और न्याय के नाम पर किए जाने वाले अत्याचार से बढ़कर कोई क्रूर अत्याचार नहीं है।
ये तो बहुत गहरी चोट करती है। जब सिस्टम जो बचाने के लिए बना है वही जुल्म करने लगे तो उससे बुरा क्या होगा।
तो अब आखिरी सवाल, इन सब महान विचारों का आज की दुनिया में क्या करें, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इनका क्या इस्तेमाल है?
देखिए, सबसे सीधा असर तो हमारे संविधानों और सरकारी ढांचों पर है। शक्तियों का बंटवारा, चेक एंड बैलेंस, न्यायपालिका की आज़ादी, ये सब मॉन्टेस्क्यू की सोच की ही देन है। जब भी इन पर कोई बहस होती है तो हम असल में मॉन्टेस्क्यू के मैदान में ही खेल रहे होते हैं।
और रोजमर्रा की पॉलिसी मेकिंग में, नीतियां बनाते समय,
वहां उनका वो सापेक्षता वाला सिद्धांत बहुत काम का है। ये हमें सिखाता है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला रवैया ठीक नहीं है। कोई भी योजना बनाने से पहले स्थानीय हालात, वहां की संस्कृति, लोगों की जरूरतें, उनका इतिहास, इन सबको समझना पड़ेगा, वरना योजनाएं फेल हो जाएंगी।
जैसे हम देखते भी हैं कई बार बाहर से लाके कोई मॉडल थोप दिया और वो चला नहीं।
और दूसरी बात, क्रमिक सुधार पर जोर। मॉन्टेस्क्यू अचानक से सब कुछ बदल देने के हिमायती नहीं थे। वो मानते थे कि समाज की सामान्य भावना का आदर करते हुए धीरे धीरे बदलाव लाना बेहतर है। एकदम से उखाड़ फेंकने से अक्सर अराजकता फैलती है।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख यही है कि कानून सिर्फ कुछ नियम नहीं है, वो किसी समाज के कैरेक्टर, उसकी जरूरतों, उसकी सीमाओं को दिखाते हैं। अगर किसी समाज के कानून समझने हैं तो पहले उस समाज की आत्मा को टटोलना होगा।
और मेरे लिए शायद सबसे अहम बात यह है कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें थाली में परोसकर मिल जाती है। ये बहुत नाजुक चीज है जिसे बहुत ध्यान से, बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। शक्तियों को संतुलित रखना, एक दूसरे पर नजर रखना, कानूनों को जमीनी हकीकत से जोड़ना, ये सब लगातार करते रहना पड़ता है। ये कभी ना खत्म होने वाला काम है।
तो हम अपने श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं, आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, नई तकनीक आ रही है, अर्थव्यवस्थाएं जुड़ रही हैं, नए सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं। ऐसे में सत्ता के संतुलन और संयम वाले मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत कितने काम के हैं, और क्या हम वाकई अपने समाज की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं या बस ऊपरी चीजों में ही उलझे रहते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।